आज के लेसन की आयात को ज़रा हम एक दफ़ा व्यू करेंगे। टॉपिक्स हैं आज के आयात के, आयत नंबर 189, चांद वक्त दिखाने का ज़रिया है। आयत नंबर 190 से 193 का टॉपिक है, लड़ाई करने का हुक्म किसी वजह के साथ है। आयत नंबर 194, हुरमत वाले महीनों के अहकाम। आयत 195, अल्लाह के रास्ते में ना खर्च करना, खुद को हलाक करना है। और आयत 196, हज और उम्रे के मसाइल हैं। इस सबक में हमें कुछ चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिलेंगी कि अल्लाह ताला ने अरब माशरे के अंदर फैली हुई कुछ गुमराहियाँ और उनकी जो बिदात थी उनका तذکرہ किया है। तो चलिए हम आयतों को साथ लेके चलते हैं। आयत 189, यसअलूनक अनिल अहिल्ला, लोग आपसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के बारे में पूछते हैं। कुल हिया मवाकीतु लिन्नास वल हज, आप कह दीजिए कि ये लोगों के लिए तारीखों की तायुन की और हज की अलामतें हैं। लिहाजा वलैसल बिर्रु बियन्ता तुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, इनसे कह दीजिए कि ये कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते हो। वलाकिन अल बिर्र मन तका, नेकी तो असल में ये है कि इंसान अल्लाह की नाराज़गी से बचे। लिहाजा क्या करो, वा तुल बुयूत मिन अबवाबिहा, लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाज़ों ही से आया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डर जाओ ताकि तुम फलाह पाओ। यहाँ से सबक का आगाज़ है। आयत का कुछ बैकग्राउंड है हमारे सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो लोग थे उनको हमारी इस्तलाह में सहाबे कराम कहते हैं। हर नबी के साथियों का लकब मुख्तलिफ होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को जो ऑनर मिली वो क्या थी कि उनको सहाबी कहा गया, और सहाबी का लफ्ज़ साहिबा से है, साथ बैठने वाले। सहाबे कराम अल्लाह के नबी सल्लम से जहाँ मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते थे, आपकी महफिल में उनको आने का शौक़ बहुत होता था, वहाँ वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट और आपकी इतनी ज़्यादा आप उनके दिलों में अज़मत बैठी हुई थी कि बहुत कम सवाल किया करते थे। कुल 14 सवालात हैं जो कुरान पाक में हमें मिलते हैं, और ऐसी तमाम आयात यस अलू नका से शुरू होती हैं। पहला ही लफ्ज़ है यस अलू नका, तो इससे चंद बातें मिलती है। उसको देख के तो फिर हम आयत का बुनियादी टॉपिक भी देखेंगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सहाबे कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने की जुरत नहीं पाते थे, खामोश रहते थे अक्सर, और कोशिश करते थे कि कोई आराबी जैसे बद्दू, गंवार, अनलिटरेट किस्म का पर्सन, यानी जो बहुत ज़्यादा एटिकेटेड लोग नहीं होते, कोई ऐसा शख्स आए और वो सवाल कर ले और हमारा भी मसला हल हो जाए। कुल 14 सवाल उन्होंने पूछे थे। इसके बरक्स बनी इसराइल ने, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, उन्होंने बहुत सवाल पूछे। हम पीछे पढ़ चुके पहले पारे में कि अल्लाह अपने नबी से तुम ऐसे सवाल ना पूछो जैसे कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे। तो लिहाजा यहाँ से सहाबे कराम ही के एक सवाल के जवाब में हमें एक बहुत ही खूबसूरत मसला पता चला। यहाँ जहन में ये भी रखिएगा कि सारे ही या सलू नका वो सहाबा ने नहीं पूछे हुए, कुछ मक्का वालों ने भी पूछे हुए थे। 8 आयात सूरत बकरा में है। आज उनमें से उसमें से हम पहली आयत पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली आयतों में आप देखेंगे कई आयात मुसलसल हमें वो सवाल पूछते हैं आपसे शुरू होती हैं। 6 बाकी जो आयतें हैं वो पूरे कुरान पाक में फैली हुई हैं, जिसमें से कुछ सूरत बनी इसराइल में भी हमको मिलेंगी। तो सवाल पूछने से ज़्यादा अमल करने वाला जहन होना चाहिए। जब लोग सपोज्ड किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, अनएंडिंग क्वेश्चन, अच्छा ऐसा हो फिर क्या हो, फिर वो हुआ, अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो जैसे एक लतीफ़ा भी मारूफ है ना कि एक शख्स ने किसी से पूछा बहरी बेड़े में कि अच्छा अगर समंदर के सफ़र के दौरान तूफान आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लंगर डाल देंगे, एंकर डाल देना, टीचर ने ये कहा। उसने कहा अच्छा फिर अगर एक और तूफान आ जाए, तो उसने कहा एक दूसरा लंगर भी डाल देंगे। उसने पूछा फिर एक तूफान आ जाए तो फिर एक और लंगर डाल देंगे। तो उसने फिर अगला सवाल किया स्टूडेंट ने कि इतने लंगर कहाँ से आएंगे, यानी वो एक ऐसी चीज़ होती है रस्सी डाल के कि जिससे जहाज़ को रोक लेते हैं। तो उस्ताद ने कहा कि वहीं से उतने लंगर लाएंगे जहाँ से आप इतने तूफान लाएंगे। हाँ, तो अनएंडिंग क्वेश्चंस का कोई फ़ायदा नहीं होता। अफसोस की बात यह कि आज हम मुसलमानों का मिजाज भी सवालिया अंदाज हो गया, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और एक सवाल में से दूसरा, और जब ये बात करें तो वो बात करें, फिर उसमें से। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से गालिबन किसी ने एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दे दिया, फिर दूसरा सवाल पूछा, फिर तीसरा, यानी सवाल पे सवाल करते रहे। तो हज़रत उमर ने दुर्रा उठा लिया, कहा अब जो सवाल करोगे उसका जवाब तुम्हें इस विप से मिलेगा। तो ये अच्छा अंदाज़ नहीं होता, पता क्यों? जब बहुत ज़्यादा सवाल पूछने का मिजाज बनता है ना, तो रूहानियत ख़त्म हो जाती है। मिसाल दूंगी कि आज के दौर में हम मुसलमान कैसे सवाल पूछते हैं, अच्छा जी वज़ू कैसे करें? तो वो कहते हैं कि जी बेहतर है कि आप लोटे से कर लें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोटे से करते थे। अच्छा, फिर अगला सवाल ये होता है कि अच्छा ये बताएं कि मिट्टी के लोटे से करें कि स्टेनलेस स्टील के लोटे से करें? वो कहते हैं चलो जी आप स्टेनलेस स्टील के लोटे से कर लें। फिर वो कहते हैं अच्छा क्या अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में स्टेनलेस स्टील होता था? तो फिर ये तो बिदत होगी ना। अच्छा फिर मिट्टी से कर, यानी ये वो सवाल आते हैं जब आप इतने पूछें आपको वज़ू की रूहानियत ही नहीं मिलेगी। नमाज में आज देखिए कितने सवाल लोग पूछते हैं, बेतुके सवाल, और अमूमन सवाल वही पूछते हैं जिन्होंने अमल नहीं करना होता। और आप भी अपने लिए अमल की बात नोट करें कि आप कुरान सीखने आ रहे हैं ना, कुरान सीखने के बाद जो मौजू चल जाए उसमें से सवाल पूछना फ़ायदा देगा। और अगर आप आते ही कि मुझे आज आपसे एक सवाल पूछना है, तो आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इल्म हासिल करने के बाद जो सवाल पूछा जाए उसका यकीनन फ़ायदा होता है। अब चलते हैं कि सवाल पूछा क्या था। अनिल अहिल्ला, चांदों के बारे में। अहिल्ला का लफ्ज़ बहुत ही खूबसूरत है, हिलाल की जमा। अरबी ज़ुबान में महीने के जो चांद होते हैं ना मुख्तलिफ, उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। हिलाल कहते हैं क्रिसेंट को, इंग्लिश में आपने सुना होगा जो न्यू मून होता है, क्रिसेंट पतला सा चांद होता है, और अमूमन बिल्कुल महीने की आखिरी तारीखें यानी एंडिंग डेज जो होते हैं और स्टार्टिंग डेज, ये चांद बिल्कुल एक क्रिसेंट एक पतला सा तार होता है, इसको अरबी ज़ुबान में हिलाल कहते हैं। फिर उसके बाद 3-4 तारीख से लेकर, 3 से लेके इधर से आप लगा लें 12-13 तारीख तक का चांद, और 17-18 से लेके फिर 27-28, यानी जो बीच के चांद हैं जो हाफ मून होता है जिसको आप कहते हैं, इसको अरबी ज़बान में कमर कहते हैं। और इसके अलावा फिर 13, 14, 15 अमूमन, लेकिन इसके आगे पीछे करके इसको बदर कहते हैं। फिर दोहरा देती हूँ, हिलाल कहते हैं न्यू मून को और साथ ही साथ इसके एंडिंग मून को भी, यानी आप उसकी पिक्चर से समझ लीजिए कि पतला सा जो चांद है अब पहले से ही पतला होना शुरू हो जाता है, बल्कि बीच में गायब भी हो जाता है, फिर नया चांद दिखता है, उसको ख़ास तौर पे हिलाल कहते हैं। और हिलाल का लफ्ज़ है ना ये हल्ला यु हिल्लू से है, आप पीछे पढ़ चुके हैं सूरत बकरा में, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, कि जो कोई पुकारा जाए गैर अल्लाह के लिए, तो हिलाल का लफ्ज़ी मानी क्या होता है, पुकारना। जब भी नया चांद निकलता है ना तो लोग पुकारते हैं, वो चांद निकल आया, चांद निकल आया। तो बच्चा जब पैदा होता है ना तो सबसे पहली आवाज़ जो उसके मुंह से निकलती है ना उसको भी इस्तेहलाल कहते हैं। तो बस ये किसके रूट के अंदर आपको ले जाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहते चांद को हैं लेकिन इसमें आवाज़ लगाने का मतलब होता है, और वो आवाज़ अमूमन क्यों लगाई जाती है, क्योंकि लोग नए चांद की खुशी करते हैं। तो अरब लोग जो थे उनके अंदर चांदों के बारे में बहुत कुछ तोहमात थे। अरब मुआशरा बिल्कुल तवहमात पर था, जिसको आप आज के दौर में कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अपनी मनमानी चीज़ों को दीन कहते थे। चांद के बारे में उनके हाँ जो आ चुकी थी बातें, उसमें क्या थी कि चांद जब भड़ रहा होता है, जैसे आप देखिए कि फर्स्ट से लेके सेकंड थर्ड से लेते लेते 13 तक चांद हमेशा बढ़ रहा होता है ना, कम से होते, और हत्ता के 14th को वो फिर बिल्कुल फुल मून बनता है। तो वो कहते थे कि चढ़ते चांद की तारीखें बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की होती हैं, जिसके अंदर शगुन लेते थे, अच्छा काम करते थे। फिर उसके बाद 14 तारीख का जब चांद बढ़ जाता, फिर उसके बाद ग्रेजुअली कम होने लगता ना, तो 15 से लेके महीने के आखिर तक की तारीखों को कहते ये बड़ी मनहूस तारीखें हैं। चढ़ते चांद के पुजारी या इस तरह के मुहावरे आज हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, तो इस बारे में कुछ तवहमात थे। सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी सल्लम से आकर पूछा कि अब इस्लाम आ गया है, हमें बताएं कि कभी चांद कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, क्या इसका कोई हमारी तकदीर से ताल्लुक़ है कि नहीं। इस पर यह आयत नाज़िल हुई थी। अब ये आप यहाँ से एक अमल की बात ये भी देख लीजिए कि किसी सोसाइटी का जो भी दीन आम तौर पे मारूफ होता है उसको अपनाने की बजाय इल्म वालों से उसकी हकीकत पूछ लेनी चाहिए। कल उनमें ये चीज़ थी, आज हमारे यहाँ भी ये चीज़ मौजूद है। शायद आपने तो ये चीज़ें ना सुनी हो, लेकिन आप पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर जब इंटीरियर में चले जाते हैं देहातों में, तो अमूमन इसी किस्म की बातें की जाती हैं। किसी की शादी रखनी हो तो कहते हैं चढ़ते चांद की तारीखों में रखेंगे, 13 तेज़ी का चांद, 3 के दिन को, 13 के दिन को बहुत मनहूस समझते हैं। कहते हैं कि ये शादी नहीं निभेगी अगर चांद घट रहा था, और अगर यकम से ले के 12-14 तक रख लेंगे तो इंशाल्लाह बढ़ोतरी होगी। फिर इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि औरत प्रेग्नेंट है, अगर उसकी ड्यू डेट जो है ये शुरू के 14 दिनों के अंदर हो तो कहते हैं बेटा होगा। पता नहीं हमें बेटा क्यों हर जगह बढ़ता हुआ ही दिखता है, हाँ। और अगर उस बेचारी की ड्यू डेट अल्लाह के हुक्म से होनी है, वो अगर 14 के बाद हो गई तो फिक्र पड़ जाती है कि बेटी होनी है। और कई सासों की फिक्र ही होती है कि अल्लाह करे अब जल्दी से बेटा हो जाए ताकि फिर 14 का दिन ना आ जाए। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। फिर इसी तरह बाज़ लोग सफ़र के महीने में शादियाँ नहीं करते, कहते हैं कि सफ़र गम का महीना है क्योंकि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई थी जिसमें बाद में आपका इंतकाल हुआ था। तो अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ बता दिया, कुल हिया मवाकीतु लिन्नासि वल हज। ये क्या है, ये हज क्या है, ये जो है इंसान को वक्त बताने की चीज़ें हैं, इन चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह सुबहान तआला ने दो कैलेंडर हमारे ऊपर रखे हुए हैं, अगर हम इस पे भी थोड़ी सी बात कर लें। एक है शमसी कैलेंडर सूरज के साथ, हाँ, और दूसरा है कमरी कैलेंडर लूनर कैलेंडर जिसको चांद का कैलेंडर कहते हैं। पहली बात है कि ये दोनों अल्लाह ताला ही के बनाए हुए हैं। अगर आज हम देखें तो इस्लामिक डेट्स जो होती हैं ये चांद के एतबार से होती हैं, सूरज के साथ नहीं होती। जैसे हमारा जनवरी फरवरी मार्च जो है ये सूरज के साथ आता है, जबकि मुहर्रम सफ़र रबी अव्वल रबी उसानी ये कमर के साथ आता है। अब क्या इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या सूरज के साथ जो है महीने वो हराम है, यानी जनवरी फरवरी मार्च कहना गुना? नहीं गुना। जिस रब ने चांद बनाया उसी ने सूरज बनाया। फिर सवाल पैदा होता है कि इस्लाम ने अपनी तारीखों के लिए चांद को क्यों मुकर्रर किया, तो उसकी भी एक रीज़न आपको दूंगी, और वो क्या कि सूरज के कम होने या ज़्यादा होने का हिसाब आम बंदा नहीं लगा सकता। आप और मैं लगा सकते हैं कि सूरज आज किस दर्जे पे है? बड़ी बड़ी माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत तो हो सकती है, आम इंसान तो उसमें से नहीं ले सकता। जबकि चांद छोटा है या बड़ा है इसके लिए किसी आलिम को पूछने की ज़रूरत नहीं, जाहिल छोटा बड़ा गांव देहात का हर बंदा जो उसको समझ सकता है। तो अल्लाह ताला ने ये दो घड़ियाँ लगा दी और दो कैलेंडर हमारे ऊपर लगा दिए कि इनके साथ तुम वक्त इनसे तुम चीज़ें लो। लेकिन लोग इन चीज़ों को बाज़ दफ़ा अपने लिए खुदाई के दर्जे पर ले जाते हैं। ख़ास तौर पर उस दौर में तो लोग सूरज चांद के पुजारी भी थे, तो वो कहते थे नहीं ये चमक रहा है तो यकीनन ये कोई बड़ी चीज़ होगी। अल्लाह ताला ने इससे मना कर दिया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आज अगर हम इन आयतों को सुनते वक्त अगर अपने घरों में अपने माशरों में कोई ऐसी चीज़ देखें तो उससे हमें खुद भी रुकना है, दूसरों को भी रोकना है। आप देखिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोग यकीन करें कि इस किस्म की बातें सोचते हैं, और जितना ज़्यादा पहले से प्लान करते हैं चीज़ों को उतना ही ज़्यादा मसला होता है। यानी बाज़ लोग हत्ता के इस चीज़ को भी सामने रखते हुए शादियां रखते हैं, वो चीज़ें जो कभी हमारे दीन का हिस्सा ही नहीं होती थी आज उन चीज़ों को भी बुनियाद बनाया जाता है शादी ब्याह के मौके पर। तो इस्लाम ऐसी सारी बेकार चीज़ों से मना करता है। फिर उसके बाद आप देखिए हमारे यहाँ कुछ और भी चीज़ें मौजूद हैं जिसका चांद के साथ ताल्लुक है, कोई आपने कभी सुनी हो तो बता सकते हैं। चांद ग्रहण कभी सुना आपने? चांद ग्रहण लग क्या जाए औरतों की शामत आ जाती है। कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट औरत होगी अगर उस वक्त वो छुरी के साथ कोई चीज़ काट रही है ना तो बच्चे का वो उस कट जाएगा। चांद ग्रहण जब लगा होता है तो ऐसी औरतों को बिल्कुल स्टिल बिठाते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि औरत खारिज करती है ना, तो वहाँ बच्चे के वो बर्थ मार्क आ जाते हैं। कभी आपने देखा बच्चे पैदा हों तो उनके कहीं सुर्ख मार्क होता है, कहीं ब्लैक होता है? ये वैसे ही होता है, बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंट डिलीवरी के दौरान ये सब कुछ होने लग जाता है। तो इसी चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं किसी के इससे। फिर कभी पीछे से आवाज़ देना, कभी आगे से आवाज़ देना। अल्लाह ताला इनकी एक और अब आदत का हमें तذکرہ करते हैं हमारे सामने, यानी अल्लाह सुब्हान तआला अब इन बयान करते हैं कि हज के नाते से मक्का वालों की क्या बुराइयां थी, क्या बिदात थी। और यहाँ ज़हन में ये रखिएगा कि ये लोग भी मुसलमान थे, नेकी का तसव्वुर इनमें मौजूद था। होता क्या था कि जब हज के लिए जाते थे ना, अब इमेजिन करें कि आपका ये घर है, आप यहाँ से इस डोर से निकल के हज के लिए निकल रही हैं एयरपोर्ट पे जाने के लिए। आप गाड़ी में गई, आपको याद है अरे मैंने पर्स तो लिया ही नहीं, आपको वापस आना पड़ेगा ना। हाँ कई दफ़ा आते हैं जब सफ़र पे जाते हैं तो जा जा के लोग आते हैं, कई तो कितना सफ़र करके आते हैं वापस वो चीज़ रह गई। और एक ऐसी भी माँ थी जो गई और वापस आई कहती बच्चे को भूल गई, हाँ बच्चा ही रह गया घर में। हज नहीं, आम सफ़र में भी जब आप निकलते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना। इन लोगों की रस्म क्या थी कि जब एक दफ़ा एहराम की नियत कर लेते कि हम हज के लिए जा रहे हैं या उमरे के लिए, और एक दफ़ा घर की चौखट निकल गए, तो जब निकले तो किसी ज़रूरत से वापस आना पड़ता फ़ौरन हज उमरे से पहले, तो फिर वापस दरवाज़े से नहीं आते थे। कहते थे जिस दरवाज़े से हम गुनाहों के साथ गुजरे थे अब वापस उसमें गुनाहों वाले ही दाखिल हो जाएं, ये तो बदशगुनी होगी। अब करें क्या, घर के बैक से आते थे, चाहे छत से कूद करना पड़ता, चाहे दीवार तोड़नी पड़ती, हमसाए के घर से आना पड़ता, और पीछे से आके बेहंगम तरीके से घर में घुसते और फिर वो चीज़ लेके जाते। अल्लाह ताला ने कहा वलैसल बिर्रु बियन तुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, ये कोई नेकी नहीं है कि तो अपने घरों के पीछे से दाखिल हो, यानी ऐसी बेढंगी चीज़ों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई दीन ऐसी चीज़ों से नहीं बन जाता कि आगे से आओ, पीछे से आओ, सामने से आओ, उधर से आओ, जिस तरफ से आते हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम ये देखो कि वलाकिन अल बिर्र मन इत्तका, असल नेकी तो उसकी है जो तकवा इख्तियार करे। बंदा इस तरह की बेकार किस्म की बातें करके अपने आप को कितना नेक समझ ले वो नेक नहीं होता। लिहाजा वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो अपने घरों में, अक्लमंद करो। मुसलमान बेवकूफ़ नहीं होता, बेकार काम नहीं करता, उल्टे सीधी बाजियां नहीं लगाता। इन चीज़ों से दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। असल नेकी करनी है तो वत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। अब देखिए कि यहाँ से हमें इस्लाम ने एक बहुत ही प्यारी सोच दे दी, और वो क्या है कि नेकी चंद रस्मी काम करने का नाम नहीं है। अफसोस की बात यह है कि जब लोगों के अंदर दीन की रूह नहीं रहती, जब तकवा बेरूह हो जाता है ना, तो कौमें इस किस्म के बेकार टोटकों को दीन बनाती हैं। मसलन आज हमारे यहाँ क्या ऐसी ऐसे तसव्वुर आते हैं, अगर आप यही बात देख लेना कि दरवाजे से नहीं गुजरना, तो आज इससे मिलता जुलता एक हमारा भी मसला है। और वो क्या है कि लोग कहते हैं कि जब एहराम बांध लेना तो सर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं रखना, कपड़े कोई सर के ऊपर छत ना हो, अल्लाह ताला आपको हज उमरे पे ले जाए। आज भी आप देखेंगे कि कई कल्चर ऐसे हैं कि जहाँ के लोग हज करने जब आते हैं ना, तो उन्होंने अपने सर के ऊपर पूरे पूरे किस्म के छिक्कू लगाए होते हैं, प्लास्टिक के, कई उनके अंदर तारे, और उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, और कोशिश करती है कि वो कपड़ा हमें टच ना करे। मसला क्या जी, कि हज में या एहराम की हालत में चेहरे को कपड़ा नहीं लगने देना। बाज़ ख़वातीन निकाब पहनती हैं, जो वो पहले नीचे पूरा एक हैट सा पहनी होती हैं, और उस हैट के अंदर से वो अपने आप को फिर उसके ऊपर कपड़ा पहनती हैं। अजीबोगरीब बातें हैं। इस्लाम इन चीज़ों की बिल्कुल भी इन चीज़ों को डिस्करेज करता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि हमारे यहाँ एक बहुत मारूफ तसव्वुर है कि कुरान पाक की तरफ पीठ ना करो। सुना हुआ आपने, जहाँ कुरान पढ़ा होता है लोग वहाँ से उल्टे कदमों से जाते हैं, जिस कमरे में कुरान पढ़ा हुआ है। खाना काबा की तरफ पाँव ना करो, बिस्तर पे लेटे में मसला पड़ा हुआ है कि जिस तरफ तो किबला है हमारे पाँव जा रहे हैं। अगर घर में या कमरे में एक ही अलमारी हो, ऊपर सबसे आखिरी खाने में अगर कुरान पाक सुपारे वगैरह रखे हों, तो कहते हैं अब इस अलमारी में नीचे जूते ना रखो, हालांकि जूता पहन के भी कुरान पढ़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें आज हमारे यहाँ भी बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से दीन बोझल हो जाता है। आप देखिए कि जब लोग इस किस्म की चीज़ों को दीन बना लेते हैं ना, तो असल दीन फिर लोगों की नज़रों से ओझल होता है। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को जमा करके देखें, हरज क्या था, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो ये कर लेते। कोई पूछे कि क्या हर्ज है इतनी अच्छी नीयत से, देखो नेक बनते हुए ये काम कर रहे हैं, कोई गुनाह की बात थोड़ी थी। हर्ज ये है कि जब दीन के अंदर अपनी मर्जी के इजाफे होने लगते हैं तो असल दीन बोझल पड़ जाता है। आज मुसलमानों का मसला भी सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने दीन के अंदर मनमाने काम इतने ज़्यादा शामिल कर लिए कि अब असल कामों का वक्त ही नहीं रहा। मसलन आप देखिए कि आज लोग बस दफ़ा दीन के नाम पे वो काम करते हुए दिखते हैं जिसको दीन कहा भी नहीं जा सकता। इसके बावजूद जब असली दीन के काम उनको कहे जाएं तो उनको अच्छे नहीं लगते। तजवीद आज कितनों को सही तरीके से आती है, कितने लोग तर्जमा कुरान का जानते हैं, कितनों को तफसीर आती है। आप ज़रा पूछें ऐसी कोई कुरान की क्लासेस के जहाँ पे शऊर के साथ कुरान सिखाया जाए, आटे में नमक के बराबर हैं। इसके बरक्स आप कुरान हानी की बात करें, आपको लोग इतने डिफेंसिव दिखते हैं, आप कुरान हानी की बात तो करके देखें। लोग मरने मारने पे तैयार होते हैं, और कोई पूछे तो आगे से कहते हैं हरज है क्या, क्या हरज है जी, सवाब ही है ना, गुनाह तो नहीं ना, नीयत तो अच्छी है। आप ज़रा सोचें वो दरवाजे के पीछे से आते थे, छत फाड़ के आते थे, कोई पूछे क्या हरज है, किसी का दिल टूटा, कोई नुकसान हुआ, नीयत कितनी अच्छी थी, सवाब भी होगा ना। चलो ये कहाँ लिखा है कि आगे से आओ या पीछे से आओ, कोई हरज नहीं। हरज सबसे बड़ा ये है कि जब दीन के अंदर आप अपनी मर्जी की चीज़ें शामिल करते हैं तो असल दीन लोगों के लिए बोझल हो जाता है। इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप देखें कि एक ड्रॉज है अलमारी के अंदर, ड्रॉ रखे में, हर ड्रॉ की एक कैपेसिटी होती है ना, उसके अंदर आप कितना सामान रख सकते हैं। अब आप उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें रख देते हैं, जब ज़रूरत पड़ी ड्रॉ को खोला उसमें चीज़ें निकल गईं, बिलफर्ज आप उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें भी डालते जाएँ, अब नतीजा क्या होगा? दो में से एक बात ज़रूर होगी, एक तो ये कि वो ड्रॉ इतना भर जाएगा कि अहम और गैर अहम दोनों चीज़ें उसमें जमा होंगी और वक्त पे आपको मिलेगी नहीं। मसलन किचन के ड्रॉ ले लें, आपको वक्त पे माचिस ही नहीं मिलेगी क्योंकि आपने उसमें पेचकस भी डाल दी, आपने उसमें चमचे भी डाल दिए, उसमें पेंसिलें भी मिल गई, उसके अंदर नेल कटर भी पड़े हुए हैं, उसके अंदर आपकी लिपस्टिक भी पड़ी हुई है। हो सकता है किसी अगर जल्दी में आप लिपस्टिक के साथ ही कुछ कर दें जो आपको कुछ दूसरी चीज़ के साथ करना था। फिर एक दूसरा ख़तरा क्या होता है कि अगर बिलफर्ज कभी आपको वो खाली करना पड़ा, उसमें मोर कैपेसिटी ना रही, तो आपको कुछ अहम चीज़ें निकाल के फेंकनी पड़ेंगी। इतनी बात क्लियर है? बस ये है हरज कि जब लोग सुन्नतों को छोड़कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीक़ों को छोड़कर मनमाने तरीके से दीन के काम करने लगते हैं ना, तो फिर फ़र्ज छूटते हैं। आज बिदात इतनी आम हो गई कि असल दीन बन गया, लोग इसी पे बड़े खुश हैं, अपने अंदर का गिल्ट पूरा कर लेते हैं वो साल में एक दफ़ा जमा होके कुरान खानी करके। कोई मुश्किल आती है तो आयत करीमा 1,25,000 दफ़ा पढ़ के वो बड़े खुश और मुतमईन है। कल हमने अपनी दूसरी क्लास पीरुल जन्ना की जो है उसके अंदर ये आयत करीमे वाली आयत तफसीर से पढ़ी है, जो साथी बैठे उनसे पूछें कि आंखें खुल जाती हैं कि आज हम क्या खेल खेल रहे हैं 1,25,000 का और अल्लाह ने क्या तरीका दिया। सही चीज़ को गलत करके पढ़ते हैं। पूरा कुरान आप इकट्ठा पढ़ लेना एक जगह बैठ के तो 6,666 आयतें हैं कमोबेश, आप उससे कितने गुना ज़्यादा ये 1,25,000 पढ़ते हैं, आप बताएं क्या कैफियत है और क्या उसका हाल है। और एक दफ़ा ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनस सालिमीन, मेरे जैसे बंदे को 5-6 सेकंड लगते हैं, तेज़ पढ़ने वाला भी पढ़ेगा तो 3-4 सेकंड तो ज़रूरी, 5 सेकंड तो लग ही जाते हैं। और लोग यूँ गुटलियाँ फेंक रहे होते हैं, साथ बातें भी कर रहे होते हैं, ना कोई कैफियत का पता, एक दफ़ा नहीं पता कि ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका मैं कह क्या रही हूँ, कि अल्लाह मैं जालिम हूँ, तू पाक है, ये जो मुश्किल मुझ पे आई है ये मेरे गुनाहों की वजह से है, तू इसको मेरे से दूर कर दे। और बार बार हम कह रहे होते हैं इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, पढ़ आपकी दोस्त रही है और कह वो रही है कि अल्लाह मैं जालिम हूँ, आप पढ़वा रहे हैं ना, खाना तो आपने खिलाना है, फिर लोगों को इजाज़त दे के वो कहें कि ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, अल्लाह मेरी ये दोस्त बड़ी ज़ालिम है, कह के देखे दोबारा आपको बुलाएंगे नहीं, ना पढ़ने वालों को पता ना पढ़ाने वालों को पता। और इन्नी कुंतु की जगह आप जल्दी में कुंता कुंता पढ़ते जाएं तो आप अल्लाह को कह रहे हैं नाउज़ु बिल्लाह कि अल्लाह तू बड़ा ज़ालिम है, ना तजवीद पता ना मानी पता, एक दफ़ा दिल में वो आहोज़ारी इल्हा वाली कैफियत ही नहीं कि जो बंदे को अल्लाह के आगे खड़ा करती है। फिर कहते जलाली बड़ा होता है, इसको पानी में तस्बीह भिगो के पियो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पेट में कहाँ तस्बीह ली थी, कहाँ उन्होंने खजूरें बादाम लिए होंगे, कितनी को दफ़ा उन्होंने पढ़ लिया होगा, और मुसलसल भी पढ़ा हो तो वो मुसलसल रहे ही 3 दिन थे, 3 दिन में एक बंदा पढ़ ही नहीं सकता 1,25,000, कहाँ से आया 1,25,000, कभी कोई सोचता ही नहीं। हाँ पढ़ो, अच्छी चीज़ है, पढ़नी चाहिए, गमों में दुखों में पढ़ो, पढ़नी चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ो और कौन पढ़े इसमें हमने मर्च मसाला लगा लिया। मेरी एक साथी हैं तो वो उन्होंने बताया कि मैं किसी स्कूल में काम करती हैं, तो कहती कि मैंने ब्रेक में फ्रूट काटा इस नियत के साथ कि मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ। तो कहने लगी कि मैंने फ्रूट काट के अभी उस पर सिर्फ नमक ही डाला था, तो जो उनकी कुलीग थी वो चीख पड़ी, कहती यह फ्रूट के साथ क्या कर रही हैं। कहती उसकी आह सुन के मैंने फौरन चाट मसाला छुपा दिया कि अगर इसने मुझे फ्रूट पे चाट मसाला डालता देखा तो ये तो मेरे पे केस ही ना कर दे। तो ये बात क्यों सुनाई कि जिस तरह हम फ्रूट पे नमक मर्च डाले बगैर नहीं खाते ना, हम सीधे खूबसूरत साफ सुथरे दीन पे भी मर्च मसाले के बगैर नहीं खाते। और कोई बात करे तो कहते हैं ये वहाबी होगा या ये पता नहीं साबी होगा। अल्लाह ताला कहते हैं अकल करो, वला किन्नल बिर्र मन इत्तका, तकवा इख्तियार करो। एक दफ़ा का ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन बंदे के कदम हिला देता है। वो अल्लाह के सामने अपने आप को खड़ा नहीं पाता, कहाँ वो बार बार पढ़ पढ़ के खेल करेगा। तो असल सोच क्या रखो कि तकवा है कि नहीं, गुनाहों से रुकते हो कि नहीं। ये कुरान जब पढ़ के उठते हो तो तुम्हारा दिल नदामत के आंसू रो रहा होता है कि नहीं, तुम्हें अल्लाह की रहमतों की उम्मीद हो रही होती है कि नहीं। क्या वाकई इसके साथ तुम सिर्फ दिखावे का दीन तो नहीं पेश कर रहे? क्या तुमने सिर्फ इस तरह का दीन तो नहीं पेश कर दिया लोगों के सामने कि पढ़ते जाओ और मुर्दों को बख्शवाते जाओ और हमारे घर हलवे खाने भेजते जाओ? ये चीज़ें जो होती हैं ये लोगों के लिए एक यकीन करें कि इतना ज़्यादा बड़ा नासूर बन जाती हैं कि फिर लोग सच्चे दीन को नहीं लेते, फिर दिल ही नहीं लगता। आप बुलाएं लोगों को कि आए हमारे पास क्लास में 2 घंटे की तफसीर की क्लास अटेंड करें, 10 उज़र लाएंगे लोग, कभी भी हफ्ते में 2 दिन नहीं आएंगे। वो कहते हैं हर महीने में एक ख़त्म पे जाते हैं, खा पी के ख़त्म कर कुर के आ जाते हैं, फिर अगले महीने जाएंगे फिर कुछ ख़त्म कर लेंगे। शुरू करने का तो शौक़ ही नहीं रहा हमें आज। हम कहते हैं सेल लगनी है तो कहते हैं लगने से पहले बताना, और कुरान हो तो कहते हैं ख़त्म वाले दिन ज़रूर बुलाना हम भी जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून। कितना प्यारा रब्त है, फलाह कामयाबी सक्सेस का एक ही राज है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। फिर इससे डरने के बाद बंदे की ज़िंदगी हकीकत में सही मानों में खूबसूरत होती है। अभी से अगली आयत का मौजू पलट रहा है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमें जो बात बताई उसको हम देखेंगे। तवील आयत है, अहम आयत है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने रखती हूँ खुलासे के तौर पर, फिर इसमें से इंशाल्लाह हम कुछ बातें देखें। पहली बात यह है कि इसके अंदर तर्जुमा याद करते वक्त आपको मुख्तात रहना है। आप देखेंगे कि कुछ लफ्ज़ों के नीचे कत्ल का लफ्ज़ आ रहा है, कहीं लड़ने का, वो क्यों आ रहा है वो मैं आपको अब बताती हूँ। फरमाया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, और तुम अल्लाह की राह में लड़ाई करो उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं। पहली बात, यहाँ पे एक जुमला पूरा हो गया कि तुम अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। दूसरा जुमला क्या है, वला तातदू, और ज़्यादती ना करो, यानी उससे लड़ो जो तुमसे लड़ता है, और जब लड़ना भी पड़े तो ज़्यादती ना करो, जो वो करते हैं तुम्हारे साथ वैसा ही करो। ये हुक्म क्यों है? इसलिए कि इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, बेशक अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ये है वो आयत जिसमें पहली बार मुसलमानों को कुफार से लड़ने की इजाज़त दी गई थी। सीरत पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि मुसलमान मक्का में 13 साल रहे, हर तरह की परसिक्वेशन थी, फितने थे, मार कुटाई थी, उनको जलती हुई रेत पे लिटाए जाते, उनको मुख्तलिफ तरीके से परेशान करते। बार बार बहादुर सहाबे कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके पूछा करते थे कि अल्लाह के नबी एक दफ़ा इजाज़त दे दें, हम भी इनको जवाब दें। आप देखिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो बहुत बहादुर सहाबी थे, मदीना में उन्होंने कई जंगों में बहादुरी के जौहर दिखाए, क्या मक्का में वो खामोश बैठ सकते थे? दिल तो आता होगा ना उनका कि इनका मुंह तोड़ दें। हम इनको क्या समझते हैं, क्योंकि इन जंग तो सहाबा कराम को भी आती थी करनी, और अरब का बच्चा बच्चा तलवारों तीरों से यूं खेलता था जैसे आज के बच्चे सेलफोन्स और कंप्यूटर गेम से खेला करते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक ही हुक्म था 13 साल में, कुफ्फु अयदियकुम, सूरत निसा में हम पढ़ेंगे। आके पूछते थे अल्लाह के नबी लड़ाई करे, कहा नहीं, कुफ्फु अयदियकुम, अभी हाथ रोक के रखो, अभी ना लड़ो, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम थोड़े हैं, अभी हमारी स्ट्रेंथ नहीं बनी, अभी वक्त नहीं आया। बिल आखिर मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए। जब मदीना में आ गए तो फिर भी मक्का वालों ने पीछे से सताना शुरू रखा, सताते रहे। मक्का से आने के बावजूद भी मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, फिर इसके बाद मदीना में यहूद भी आ गए, तो इन आयात में पहली दफ़ा इजाज़त दी जा रही है। अब आज की इन आयात को पढ़ के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप इस बात पे अपने दिल को भी मुतमईन पाएंगे कि क्या इस्लाम एक टेररिज्म सिखाता है, क्या इस्लाम जो है ये दहशतगर्दी सिखाता है, सुसाइड क्या है और बॉम्ब ब्लास्टिंग क्या है। आप इस्लाम का मिजाज इंशाल्लाह समझ जाएंगे इन दो आयतों की रोशनी में। सिर्फ पहली बात कह दी कि हाँ अब इजाज़त है, इतने साल का सब्र काफ़ी होता है, पहले तुम नहीं लड़ सकते थे लेकिन अब अगर वो तुम्हें मारें वो लड़े तो तुम भी लड़ो। बताइए क्या ये ज्यादती की बात है? किसी को कहना कि हाँ तुम उससे लड़ लो जो तुमसे लड़ता है, क्या ये अच्छी बात है कि बुरी? ये तो फितरत का असूल है। आप एक कॉकरोच को मारने जाते हैं वो भी अपनी जान बचाता है, छोटे बच्चे को कोई मारता है तो वो छोटा बच्चा भी उससे दिफा करता है, वो भी अपने नाखूनों से चाहे हम उस पर हमला कर दे या उसको दांत काट के आ जाए वो भी करेगा, फितरत का असूल है। हाँ जो बात सिखाएगी वो क्या है कि ला तातदू, ज्यादती ना करना। ज्यादती ना करने में क्या क्या चीज़ें थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंगों के असूल बताया करते थे सहाबा कराम को, उसमें पहली चीज़ क्या थी कि सिर्फ उन्हीं काफिरों पे हाथ उठाओ जो तुम्हें मारने के लिए घरों से निकल आते हैं। मिसाल ले लीजिए कि आज दो मुसलमान मुल्क, एक मुसलमान मुल्क और एक काफिर मुल्क है। इस्लाम क्या कहता है कि जिस काफिर फौजी ने हमला किया है, जिसने मुसलमान के मुकाबले पे खुद को पेश किया, बस उसको मारो। ये नहीं कि उन्हीं के घर के अंदर जाके बॉम्ब फेंको और नहत्ते बेगुनाह शहरियों को मार दो। आज के दौर की जंग को आप देख लें, सरासर इस्लाम के असूलों के खिलाफ है। इस्लाम ने जंगों के भी अदब सिखाए, इतने खूबसूरत एटिकेट सिखाए लोगों को कि बाज़ दफ़ा ये देखा गया कि सारा दिन लड़ाई हो रही होती थी दुश्मनों के साथ, शाम जब होती अंधेरे का वक्त तो दोनों तरफ से डिक्लेयर होता कि भी इसके बाद ना तुम कोई तलवार तीर चलाना ना हम चलाएंगे, सब अपने अपने खेमों में चले जाते, कल सुबह फिर लड़ेंगे। बाज़ दफ़ा रात को एक दूसरे को खाने पका पका के भेजते थे कि ये खाना खा लो और तुम पी लो, ज्यादती ना करो। पहली शर्त क्या है इसकी? जो फौजी लड़ने आया है उसको पकड़ो, तुम किसी दूसरे काफर पे हाथ नहीं मारोगे। बस अगर पाकिस्तान या इंडिया की जंग है खुदा न खास्ता तो पता चले कि पाकिस्तान में रहने वाले कुछ इंडियंस या हिंदू हैं उनको मारने लग जाओ, कतन ऐसा ना करो। दूसरी शर्त आप दिया करते थे कि बच्चों बच्चों औरतों और बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना। फिर अगली शर्त क्या थी? हैंडीकैप्ड लोग, अपाहज लोगों पे हाथ नहीं उठेगा। फिर अगली शर्त ला ता तदू में क्या थी कि जो राहिब हैं, जो प्रीस्ट हैं, यानी जो इनके मजहबी रहनुमा हैं, जो इबादत गाहों में बैठे हुए हैं, उन पे हाथ नहीं उठेगा। फिर अगली शर्त क्या थी कि इनका मुसला ना करना। मुसला लिख लें, ये एक टर्म है, अरबों की आदत क्या थी कि जब किसी को जंग में मारते थे ना तो उसके बाद फिर उसके बॉडी पार्ट्स को काटते थे, कानों को अलग कर दे, नाक काट लेते, उंगलियां काटते, फिर डोरी के अंदर उनको पिरो के उसके हार बना के गले में पहनते थे, टॉर्चर, सिर्फ टॉर्चर देने के लिए खाते। नबी सल्लम के चचा हज़रत हमज़ा अलैहि सलाम को जब ग़ज़वे उहद में शहीद किया गया तो हिंद नाम की औरत ने उनका कलेजा फाड़ा, जिस्म को फाड़ा, उसके अंदर से आपका लिवर काट के तो उसको चबाया था। इतनी अजियत दे के लोग मारते थे, इस पे भी फ़ख्र समझते थे। आप ये तो पढ़ेंगे कि मुसलमान लोगों की खोपड़ियों को काट के तो उसके बड़ी बड़ी इमारतें बनती थी। मेरे पास एक ईमेल में किसी ने भेजा कि ये सलीबी जंगें, यानी जो क्रिश्चियंस की जंगें हुई थी और क्रिश्चियन एंड ज्यूज़ की भी जो जंगें होती हैं और बाज़ दफ़ा मुसलमानों के साथ भी जो मामला इन्होंने किया कि पूरी पूरी बिल्डिंग्स जो है ना वो खोपड़ियों की बनी हुई है, मार के बॉडी पार्ट्स को अलग करते थे फिर उनकी खोपड़ियों के साथ पूरी डेकोरेशन करते थे। इस्लाम कहता है ला तातदू। अब आप बताइए जब इतनी पाबंदियां हों और किसको कहा जा रहा है दुश्मनों के साथ ज्यादती करने में तुम हद से ना बढ़ो, तो क्या इस्लाम आपस में अपनों से लड़ने में ज्यादती की इजाज़त दे सकता है? आज तो भाई बहनों के गिरेबान पकड़ लेते हैं, आज तो इल्ज़ामात लगते हैं शौहर बीवी के मामले में झगड़े, ज्यादती इस्लाम कभी भी पसंद नहीं करता। चाहे मुसलमान मुसलमान पे करे, मुसलमान काफिर पे करे या कोई किसी और पे करे। इमाम इब्ने तैमिया का एक बड़ा प्यारा कौल है, फरमाते हैं कि कोई हुकूमत कुफर के ज़ोर पे कायम रह सकती है, यानी कुफर का निज़ाम है चल रहा रहेगा, लेकिन कोई हुकूमत जुल्म के निज़ाम पर नहीं चल सकती। तो अल्लाह ताला ने अपनी पसंद बता दी कि इन अल्लाह ला युहिब्बुल मोतदीन, अल्लाह ताला को ज़्यादती करने वाले पसंद नहीं। ज़रा मैदान जंग से बाहर निकल के आप देखें कि ज़्यादती हम कहाँ कहाँ करते हैं, कभी किसी ने किसी से ज़्यादती की और कहाँ की, किस जगह की। आज देखिए कि ज़्यादती तो हर जगह है ना, एक्सट्रीमिज़म। आप इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पसंद नहीं करता। ज़्यादती खाने में भी होती है, ज़्यादती पीने में भी होती है, ज़्यादती तो माल खर्च करने में भी होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़ायद कोई भी काम कर देना, अल्लाह ताला को ये हरगिज़ नहीं पसंद। अगर एक मुसलमान ज़्यादती वाला दीन रखेगा या दुनिया में रखेगा मामला ऐसा कि जिसमें दूसरों के हक मारेगा, तो अल्लाह उसको भी पकड़ेगा। किसी ने कहा कि कोई यूरोप से मूव होके पाकिस्तान जा रहे थे और दिन रात शॉपिंग कर रहे थे क्रेडिट कार्ड्स पे। तो पूछा किसी ने कि ये बिल जो आएंगे ये कौन पे करेगा, कैसे देने? कहने लगे देनी किसने है, हम तो जा रहे हैं, पीछे से बिल भेजते रहेंगे, ना हम होंगे इधर ना होगा। उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे? कहने लगे ये चूँकि काफिर है, इनको खूब नुकसान पहुँचाओ। ये है ज़्यादती करना। आप बताइए कैसा इस्लाम का नुमाइंदा बन के हम इज्जत पा सकते हैं? आज क्यों मुसलमान की इज्जत नहीं? आज हकीकत में लोग अगर मुसलमान को टेररिस्ट कहते हैं तो सच कहते हैं। हम खुद बेवकूफ़ हैं, हमने अपना दीन ही दूर करके पेश कर दिया। कहाँ इस्लाम सुसाइड की इजाज़त देगा? कहाँ इंसान कहेगा कि खुद को बम बांध के जाओ और किसी की मजहबी इबादत गाह को ख़त्म कर दो? कतन इस्लाम का इसके अंदर कोई दखल नहीं है। कोई किसी की मस्जिद को गिराए, किसी के मंदिर को गिराए, कहाँ अल्लाह के नबी ने मक्का के 13 साल में सहाबा को कहा कि जाओ बम बांध के दारुल नदवा में जाओ और तुम भी मर जाओ और उनको भी हलाक कर दो? ये हाईजैकिंग कर लेना, जहाज़ों को उड़ा लेना, उसको मारें, इस्लाम कतन इसको पसंद नहीं करता। कितने लोग हैं जो इस्लाम की ये बात दूसरों तक पहुंचाते हैं? हम तो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं जब लोग हमें टेररिस्ट कहते हैं, जब लोग हमें फंडामेंटलिस्टिक कहते हैं। इस्लाम बराबरी सिखाता है, इज्जत सबके लिए, असूल सबके लिए। अगर पीस मुआहदा है तो सबके लिए पीस होगा। अगर इस दुनिया को वेपन्स फ्री बनाना है तो सारी दुनिया में वेपन नहीं होंगे। ये नहीं कि वेस्ट में तो सारे वेपन्स और ईस्ट में कोई नहीं, और जब ज़रूरत पड़े तो यूं से ही ख़रीदने लगे। हाँ, आप फेंकिए हथियार, हम सबसे पहले फेंकेंगे। आप करिए अमन के जंग पे माहदे कि अमन होगा, जंग नहीं होगी, हम सबसे पहले करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर टिट फॉर टैट, बदले की बात तो बदले के साथ है। इसलिए अगली आयत में अब अल्लाह ताला मुसलमानों को इजाज़त देते हैं कि वक्तलूहुम, और मारो उनको। अब यहाँ देख लीजिए कि मैंने इसका तर्जमा वक्तलूहुम का मारो या कत्ल किया है। आप इस पूरी आयत में देखेंगे कि जहाँ काफ के ऊपर जज़्म है ना, आप इस आयत के ऊपर अगर आप देखें ना, ये देखिएगा, यहाँ ये जज़्म है, वक्फ है, वक्तलूहुम, तो इसके तर्जमे में यकीनन कत्ल का लफ्ज़ आएगा। लेकिन आगे आप जाके देखेंगे मिनल कत्ली, इसमें भी जज़्म आ रही है ना। लेकिन जहाँ ये युकातिलूकुम, ये लड़ाई करना है, बस आप एक छोटी सी पहचान याद रख लें, काफ ता लाम में से किसी पे अगर जज़्म आ रही है ना तो उसका मानी कत्ल है, यानी किलिंग, मर्डर। लेकिन कातला ता के ऊपर कुछ ना हो जज़्म, तो इसका मानी लड़ना होता है। अब इसको सामने रखते हुए इस आयत को सुनिए, ये थोड़ी सी मुश्किल आयत है तर्जमे के एतबार से। फरमाए वक्तलूहुम, और मारो उनको। किसको कहा जा रहा है? मुसलमानों को कहा जा रहा है। क्या आज हम सबको कहा जा रहा है? नहीं, मक्का से हिजरत करके मदीना आने वालों को कहा जा रहा है कि तुम भी इनको मारो। किनको मारो? मक्का वालों को मारो। कहाँ मारो? हैसु सकीफ तुमूहुम, जहाँ इनको पालो, जहाँ तुम्हें ये नजर आए मार दो। अब बताइए ये आयत आप मिस कोट करें, आज नॉन मुस्लिम क्या करते हैं? ऐसी आयतों को नेट पे लाते हैं, कहते हैं देखो ये इस्लाम अमन की बात करता है, ये तो कह रहे हैं कि काफरों को जहाँ देखो मार दो। अब आप बताएं, ना आपने हिस्ट्री पढ़ी, ना सीरत पढ़ी, ना आपको इस आयत का शान नुज़ूल पता। अगर हदीस को अलग कर दें इस आयत से, तो इसका मतलब यह कि कोई काफिर आपको जहाँ दिखता उसको मार दें। उस कोने में कोई काफिर खड़ा है, सीधी शूट मारें, उधर मारें, जहाँ आपको अपने इर्द गिर्द पब्लिक प्लेसेस में, एयरपोर्ट्स में मिलें, बस मुसलमान गन निकाले और मार दें। कुछ मुसलमानों ने शायद ये मफहूम समझ भी लिया होगा, लेकिन आप कुरान खोल के बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? हैस सकीफ तुमूहुम का मतलब नीचे लिखिए एरो डालकर, मैदान जंग में, बैटल फील्ड में, जो तुम्हें मारने के इरादे से घर से निकल आया है फिर मारो। अब ये तो नहीं, नहीं नहीं आप मुझे मारिए, नो प्रॉब्लम, आई एम स्माइलिंग, आई विल नॉट किल यू, प्लीज़ गो हैड, किल मी, किल मी। इस्लाम तो खुदकुशी पसंद ही नहीं करता, क्यों कैसे कर सकते? आप मुझे मारने आए और मैं आपको को मुझे मार ले? हदीस में आता है कि जो अपनी जान बचाते हुए मारा गया वो भी शहीद है, जो अपना माल बचाते हुए मारा गया वो भी शहीद है, जो अपनी इज्जत बचाते हुए मारा गया वो भी शहीद है। हाँ, जो तुम्हें मारने के इरादे से आए उठो फिर मारो, क्योंकि अगर इस्लाम ये इजाज़त देता कि जो तुम्हें मारने आया है तुम हाथ ना उठाना और ये तुम्हारा दीन है, तो अब दुनिया में कब के मुसलमान मर चुके होते। आते लोग मार के चले थे और मुसलमान कहते चूँकि हम दीनदार हैं तो बस हम नहीं आगे से हाथ उठाएंगे। देखिए, मुसलमान या दीनदार होने का अंदर बेवकूफ़ होना नहीं है, सेल्फ किलिंग नहीं है इसका मतलब। फिर कहा वह अखरीजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, और तुम इनको वहाँ से निकालो जहाँ से इन्होंने तुमको निकालो। इशारा किस तरफ है? कि इन्होंने तुम्हें मक्का से निकाला, अब तुम भी निकालो इनको अगर मौका पड़ता है। वल फितना तो अशद मिन अल कत्ल, और फितना तो कत्ल से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ फितने से क्या मतलब है, दो मानी लेंगे हम। नंबर एक, फितने से मुराद है शिर्क। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। इसके लिए इंग्लिश में बहुत ही बेहतरीन तर्जमा होता है फितने का, परसिक्वेशन। परसिक्वेशन क्या होता है कि किसी गिरोह या किसी इंसान को महज इसलिए जुल्म और सितम का निशाना बनाना कि उसने उस गवर्नमेंट या उस हकूमत के नज़रियात को छोड़कर अपने दीनी नज़रियात को कबूल किया हुआ है। आसान लफ्ज़ों में कह लें कि फितने का मतलब यह है कि किसी को उसकी रिलीजियस आज़ादी ना देना। मुसलमान हैं लेकिन अपने रिचुअल्स पे कायम नहीं रह सकते, मुसलमान हैं नमाज़ें नहीं पढ़ने की इजाज़त, मुसलमान हैं लेकिन उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो औरतें हैं तो वो हेड कवर करें या अपने आप को छुपाएं, मर्द हैं तो उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो शराब पिएं। ये परसिक्वेशन है। एक छोटी सी बात समझ लें तो इंशाल्लाह आप इस बात को और क्लियरली समझेंगे। आप समझ देना कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का कोई कानून होता है, राइट? जैसे हम इस वक्त नॉर्वे में रह रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्वे का एक कानून है ना, गवर्नमेंट है। चले उनके लॉ के अंदर उनका रिलीजन है कि नहीं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ लॉ है ना। अमेरिका में आप जाते हैं वहाँ का लॉ है, पाकिस्तान में जाते हैं नाम का ही सही लॉ तो है ना उनका। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? गालिबन ब्रुनाई है, उनका भी लॉ है ना। जिस मुल्क में आप रहते हैं आप उसी के लॉ को फॉलो करते हैं, करना पड़ता है ना। यानी अगर यहाँ ट्रैफिक रूल्स हैं, हो सकता है अमेरिका से फ़र्क हो, पाकिस्तान से फ़र्क हो, आप यहाँ के फूल अप्लाई करेंगे ना। सिंपल सी बात है, सब करते हैं। वो कहते हैं इस वक्त दुकानें खोलो, खोलते हैं, बंद करो, करते हैं। अब आप इस बात को ज़रा एक बिग सिनेरियो में लाएं। ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं इनकी एक हकूमत है ना, इनके लॉज हैं। अब आप पूरे ग्लोब को सोचें, किसका है ये? लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। आप नॉर्वे को बेक करके सोच लें, पूरी दुनिया एक लॉ, एक मुल्क बन गया। उस पूरे मुल्क का कानून किसका होना चाहिए? अल्लाह का ना, क्योंकि अल्लाह ऑन करता है उस पूरी दुनिया को। अब आप इमेजिन करें इस बात से कि पूरे ग्लोब पे फिर क्या हुकूमत होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको समझेंगे फिर बात वाजे होगी। यानी असूलन देखें तो पूरी दुनिया के अंदर अगर आज 100 कुछ मुल्क हैं ना, तो हर मुल्क पे झंडा लहराना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह का, फेयर होने के लिए। जैसे आपके इस मुल्क का कानून है, अल्लाह का एक कानून है। अब इस रोशनी में अगर आप देखें तो फितने का पहला मतलब तो ये बनता है कि ला तकूनु फितना, यानी ला तकूनु कुफ्र या ला तकूनु शिर्क। इस्लाम का जो गोल है वो क्या है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैले और इस्लाम का झंडा फैले। अब आप क्या कहेंगे कि दुनिया में जहाँ जहाँ गैर मुस्लिम हुकूमतें हैं आप वहाँ जाके तलवार के ज़ोर से काम करें और सब जगह जाके ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे लगाएं? इसका नाम जिहाद है? इसका नाम जिहाद नहीं है। हमारे आज के मुसलमानों का मसला क्या है कि इन्होंने जिहाद का सही कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं। देखिए कि एक लफ्ज़ है किताल, जो हम जिसको हम जंग करना कहते हैं, जिसके ऊपर सारा मसला है। और आज के दौर में लोग जिहाद के लफ्ज़ को ही किताल समझते हैं, हालांकि जिहाद एक बिग टर्म है। जोहद, मेहनत। इस वक्त आप कुरान सीखने में जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये भी जिहाद है। सुबह फजर में उठने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ती है वो जिहाद बिन नफ्स है। आप लिख रहे हैं तो ये आपका जिहाद बिल कलम है। तलवार उठती है तो वो जिहाद बिस सैफ होती है। इस वक्त अगर हम चाहते हैं ना कि इस पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम के नाम का झंडा लगे, क्योंकि ला तकूनो फितना, तो ये तलवारों से नहीं होगा, क्योंकि इतना खून बह जाएगा कि शायद आधी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। कोई ज़बरदस्ती आपको अपना मुल्क छोड़ के वहाँ इस्लाम का झंडा लगाने देगा? नहीं होगा। ये कैसे होगा? कलम के ज़रिए से होगा, तबलीग के ज़रिए से होगा। सच्चे दिल से, इखलास के साथ इस्लाम की तबलीग इतनी ताकतवर किस्म का हथियार है ये कि इसके आगे बड़ी बड़ी तोपें और टैंकर बेकार होते हैं। इस्लाम का मिजाज क्या है कि मुसलमान इस कोने में बैठे हुए हैं, इमेजिन कीजिए कि ये दुनिया का मिसाल है कि सेंटर है, कि ये पूरी दुनिया है आपकी, ये मक्का है, मिडल में थे मुसलमान, इस्लाम यहाँ से शुरू हुआ। अल्लाह के नबी सल्लम लोगों को जो प्लान दे के गए थे ना, वो क्या था कि अब तुम मेरे मरने के बाद तुम मक्का और मदीना ही को ना लेके बैठ जाना, के रोज़े की जालियों को चूमते रहो और नाते पढ़ते रहो। उठो, फल आपने अपने आखिरी पैगाम में, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं, वहाँ एक मैसेज दिया था कि अब सारे जाओ, हाजिर गायब को सुना दें। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज जो बातें हुई हैं ना, आप जितने लोग यहाँ हाजिर हैं माशाल्लाह, आप उठिए और इस शहर के बल्कि दुनिया के गायब लोगों को आज का सबक पढ़ा के आएँ। ये एक जुमले में अल्लाह के नबी ने कहा था कि अब जो बात आपने सुन ली है ना, आप उठें और जाके दूसरे को बताएं। 3 दिन लगे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद, जिसमें सहाबा इकराम गमज़दा भी थे, दुखी भी थे, रो भी रहे थे। 4थे दिन से मदीना खाली होना शुरू हो गया था। सबको एक बात चाहती कि अल्लाह के नबी हमें कह गए हैं कि जो पैगाम तुमने अपने कानों से मेरी ज़ुबान से सुन लिया है, इसको जाओ दुनिया तक फैलाओ। माज बिन जबल गए यमन की तरफ, हज़रत अली निकले कोई कूफा की तरफ, कोई ईरान, कोई इराक। सिर्फ 2 साल अबू बकर सिद्दीक और 10 साल हज़रत उमर फारूक का दौर आया कि मक्का से उठते हुए यूं चारों तरफ मुसलमान फैले कि ये सब मुल्क मुसलमान हो गए। ईरान, इराक, ये जो उस दौर की सुपर पावर्स थी, कैसरो किसरा, सब मुसलमान हो गए। बैतुल मक़दस पहली दफ़ा मुसलमानों के हाथ में आया, कब? हज़रत यूशे बिन नून के बाद। इमेजिन करें, अब आप तो उतनी तरह उस तरह नहीं सोच सकेंगे अभी, मुझे यकीन है, क्योंकि अभी शुरू के आपके दिन है ना, अगले पारों में आएंगे तो समझेंगे। इस्लाम फैला है किस चीज़ से? कि मुसलमान खुद दीन सीखें, दीन के सही रोल मॉडल बने। ला तातदू, मोतदीन ना बनो, अपने घर से शुरू करो। मैंने किसी पे ज़्यादती नहीं करनी, मैंने अपनी मुलाजमों पे ज़्यादती नहीं करनी, मैंने अपने कुलीग्स पे ज़्यादती नहीं करनी, मैंने अपने नेबर्स के साथ ज़्यादती नहीं करनी। जब एक मुसलमान अमन का पयाम्बर बन जाता है, एक सच्चा मुस्लिम, एक पीस मेकर बन जाता है, आप देखिए वो वहाँ से उठेगा, कभी कोई चाहेगा कि ये हमारे पास से जाए? सच्चा मुसलमान जिस जगह रहता है, वो जब जाते हैं ना, ज़मीन के टुकड़े भी रोते हैं, आसमान भी रोता है कि ये क्यों चला गया, इतना ये पिरमन था। और हकीकत में जब तक मुसलमान इस किताब से जुड़े हुए थे, वो ऐसे ही थे। आप पढ़ें हिस्ट्री मुसल पाकिस्तान की, बरे सगीर पाको इनकी हिस्ट्री में आप पढ़ें कि जब मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का लड़का था, ये टीन एजर, और जब ये सिंध में आया था, इसने इस्लाम की बात की थी, इसको वोट मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं ने दिए थे। क्यों? वो कहते थे कि हमने इस बच्चे में इंसाफ देखा है। हम तो राजा दाहिर, जो एक अपने वक्त का जालिम बादशाह था, हम तो राजा दाहिर के जुल्म के मारे हुए हैं। वो हमारा होके भी हम पे जुल्म करता था, ये मुसलमान होके हम पे इंसाफ करता है। और यकीन करें कि लोगों ने इसके लिए चंदा जमा किया था कि जिससे जमा करके इसने एक फ़ौज जमा की और सिंध को फतह किया। 17 ईयर्स का लड़का, आज जाएं घरों में अपने 17 साल के भाई से पूछ लें, सिर्फ चंद 10 सहाबा के नाम पूछें उससे, कुरान की 10 सूरतों के नाम पूछ लें, मक्का मक्की सूरतें बदनी हैं, अपने ऊपर भी ले लें। 17, 18, 20 साल की उम्र तक आप हो गए, जाएं आप अल्लाह के नबी की 10 सहाबियात के पूरे नाम याद करके बता दें। हमें तो वो मत ही नहीं, हम तो आज खुद अपने इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। आज हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनते हैं? हम तो खुद उनकी सुन्नतों से दूर हैं। अभी तो वो जिहाद बड़ा दूर है जिसका ख्वाब हम देख रहे हैं। अभी तो वो कौम तैयार करनी है जिनके दिल में ईमान की शम्मा होगी, और ये कब होता है? दावत और तबलीग। इस वक्त जो काम आपसे अल्लाह यहाँ करवा रहा है ना, इस शहर में, यकीन करें कि आप एक ऐसी बुनियाद खोद रहे हैं। हमने कहाँ रहना है? हम सब हो सकते हैं इसका फल ना देख सके। आज मोहम्मद बिन कासिम को कहाँ पता है कि उसका नाम कोई ले रहा है? उस वक्त उसको भी नहीं पता था, वो तो एक छोटा सा तालिब इल्म था, लेकिन आज तारीख उसका नाम लेती है तो उसको फ़ातेह सिंध कहती है ना। यकीन करें, आप यहाँ जिस वक्त आते हैं ना, घर से निकलते हैं, सबसे पहले नियत करा करें कि अल्लाह मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि हत तला तकून फितना, मैंने इस दुनिया इस मुल्क के पहले कुफर को ख़त्म करना है, शिर्क को ख़त्म करना है, काफिर को नहीं ख़त्म करना। याद रखिए, जुमला लिख लें, इस्लाम की जंग काफिर से नहीं है, कुफर से। इस्लाम काफिर को नहीं कत्ल करना चाहता, बहुत आसान है, मारो सबको एक दफ़ा ख़त्म होंगे। इस्लाम चाहता है कि इनके दिमागों से कुफर निकल के इस्लाम भरो। तुमने सबको मार के कोई अपना नाम थोड़ी बुलंद करना है कि सारे मर जाएं और मैं जन्नत में अकेला रहूं। तुमने इनकी बाहों में बाहें डाल के जन्नत में जाना है। अल्लाह के नबी एक दुआ कर देते ना, अल्लाह सारे काफिरों को मार दे, अबू जहल मर जाए, उतबा मर जाए, शैबा मर जाए, रुबिया मर जाए, और मैं फातह मदीना बन के, मक्का का फातह बन के फिरूँ। नबी की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह ने कर देना था, लेकिन आपने 13 साल मार खाई, सहाबा को तकलीफ़ें हुई, क्यों हुई कि नहीं अल्लाह अभी इनको खैर है, अभी खैर है। आप मक्का से निकल के मदीना ताइफ गए कि शायद जहाँ कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए। मक्का में तो कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा, लोग दीवाना मजनू कह रहे हैं, और ताइफ गए, आप देखिए कि अल्लाह के नबी के साथ उससे भी ज़्यादा सख्त हालात आए। लोगों ने अपने गली के ओबाश गंदे गुंडा किस्म के लड़के पीछे लगा दिए। कभी सोच के तो देखें, हमें तो कोई हल्की सी बात करते हम कहते बस ख़त्म, स्टॉप स्टॉप, बस बेटा इससे आगे ना बढ़ना, इतना ही दीन बहुत है, ठंडा ठंडा दीन लो। ताइफ में थे, आपके पीछे लड़के लगा दिए, कुत्ते के गले में रस्सी डाल के वो रस्सियाँ आपके साथ बांध दी, अल्लाह के नबी को ले के ताइफ के पहाड़ों में वो फिरते थे, और आपके पाँव में इतना खून था कि आपकी जूतियाँ चिपक जाती थी उसके साथ। कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जोश आया, पहाड़ों के फरिश्ते को जोश आया, कहा कि अल्लाह के नबी इजाज़त दें, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, मैं दोनों पहाड़ों को यूं मिला दूँ ये पूरी कौम पिस के रह जाए। कहा कि तुम खुद आए हो कि अल्लाह ने कहा? कहा नहीं, मुझे आपकी हालत देख के ये ख्याल आ रहा है। कहा नहीं, ऐसा ना करो, शायद इनकी नस्लों में से कोई इस्लाम पे आ जाए। तड़प ये होती है। आज हम कैसे चैन से खाते पीते सोते जागते हैं? इतने प्यारे लोग, इतने खूबसूरत लोग, इतने बेजरर किस्म के लोग खामोशी से जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, हमें कैसे चैन आता है? हम कैसे इन मुल्कों से सोशल एड ले सकते हैं? हम कैसे इन लोगों से बेनिफिट्स ले सकते हैं? हम पहले इनको देने की तो फिक्र करें, इनको एक चीज़ दे दें कि हत तला तकूनु फितना। दो ही तरह के दुनिया में नॉन मुस्लिम मुल्क है ना, एक वहाँ जो मुसलमानों को नुकसान दे रहे हैं, टॉर्चर देते हैं, वहाँ फितना आता है प्रोसिक्यूशन के मानों में, मुसलमानों को टीज़ करना, मारना। लेकिन जैसे ये नॉर्वे है, मेरे गुमान के मुताबिक बेहतरीन मुल्क है, बेहतरीन इनकी पॉलिसीज़ है, अल्लाह अंदर जानता है। देखें, वो तो मुसलमानों की भी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ दिल में ग्रज है, नॉन मुस्लिम के दिल में मुसलमान के लिए, वो इज़ नेचुरल। लेकिन ज़ाहिर अमन है ना, कभी आपको किसी ने रोका कि नमाज ना पढ़ें, पर्दा ना करें, ये ना करें, वो ना करें? यहाँ इनका मसला सिर्फ शिरक है। अगर हम सिर्फ इतने साथी तैयार हो जाए ना इस शहर के लिए, यकीन करें जितने आप यहाँ बैठे सुन रहे हैं, अगर आप में से हर बंदा अपनी कीमत पहचान ले और इस कुरान के साथ इस तरह जुड़ा रहे कि एक दफ़ा ये कुरान आपके अंदर उतरे, आप काफ़ी हैं इंशाल्लाह इस शहर के लिए, मैं पूरे शौर से कह सकती हूँ। आप में से एक एक बंदा 100-100 लोगों से इंटरेक्शन कर सकता है अपनी अगली ज़िंदगी में। आप में से जो 15-16 साल की बच्ची है, कल भी हम बात कर रहे थे कि जो 15 साल की आ गई है इधर, 10 साल तक वो टिकी रहे इल्म के साथ, 25 साल में आपको पता नहीं वो क्या बन जाएगी, वो इतनी कीमती बन जाएगी कि उसको तिजोरी में रखने की ज़रूरत है। अल्लाह की नज़रों में जो वक्त है ना, वो सही मुसलमान की है। और जो मुसलमान खुद कहते हैं, देखिए ये बहुत आसान होता है जंग की कॉल देना, आप एक आवाज़ लगाते हैं कि सारी फौजें जमा हो जाएं, क्योंकि उसमें जज्बात होते हैं, हज़ारों जमा होते हैं, और आप एक आवाज़ लगाते हैं आओ लोगों कुरान पढ़ें, तो चंद 100 भी नहीं जमा होते। आप जो लोग इस्लाम के लिए लड़ने के लिए निकले, उनको आप कहें कि पहले आप ज़रा अपनी बर्थडे तो ख़त्म करें, ये आप शादी की ज़रा मेहंदी बुट्टन तो ख़त्म करें, कहेंगे शट अप, चुप करो, जल्दी से जंग करके आते हैं क्योंकि रात को घर में मेहंदी का फंक्शन है। ऐसे मुसलमानों से काफिर कभी नहीं डरते, यकीन करें, वो हंसते हैं घर जाके। आपने एक वाक़या सुना होगा, गालिबा राजीव गांधी या उसकी बीवी का, सोनिया गांधी थी या है पता नहीं, बहुत पहले का मेरे पास उसकी कोटेशन थी, कि उसने आके टीवी पे ये अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान और इंडिया का तकाबुल उसने किया था कि अगर हम इतने साल में पाकिस्तान से सरहदी जंग नहीं जीत सके तो हमें इसका कोई गम नहीं है, लेकिन हमें ये खुशी है कि हम नजरियाती जंग जीत चुके हैं। कैसे? उसने कहा कि आज हमें पता है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा रात को इंडियन मूवीज़ देख के सोता है, तो हमने इनके नज़रियात, हमने इनकी सोचें जीत ली हैं। ये रस्सियाँ हैं, हमारी फिल्में इनके घरों में चलती, हमारे हीरोज़ इनके हीरोज़ हैं, हम सक्सेसफुल हैं। और सच है, ऐसे मुसलमान कुछ नहीं करते। यकीन करें, आप जंग का नाम भी लेंगे तो खुद ही मरेंगे। पहले पैदा करनी है लोगों में तड़प तो इल्म की, दीन की, वही तरीका सही है। किसी जगह जंग लगी हुई है ना, आप चले जाएं वहाँ, आप वहाँ जाके अपना हिस्सा क्या डालें, तलवार दें? नहीं, वहाँ के लोगों को कलम दें। कभी आप अगर टीवी में खबरें देखते हैं ना, किसी मुल्क में मुसलमानों पे हमला हुआ, फिर वहाँ से लुटे पुटे लोग आए दूसरे मुल्कों में, कभी आप लुटे पुटे मुसलमानों के हाल हुलिये देखा करें? इस्लाम का नाम तक नहीं होता। कई साल पहले की कहानी है, बोस्निया में जंग थी बहुत बड़ी। हमारी एक साथी थी, तो उसके शौहर का तबादला हो गया बोस्निया में, तो वो बड़ी परेशान थी कि मैं कोर्स कर रही थी और छूट गया, और मैं वहाँ क्या करूँगी और मैं क्या करूँ। तो उसको उस्ताद जो थे हमारी, उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम जाओ वहाँ जाके तुम काम शुरू करना, देखना लोगों को बहुत दीन नहीं आता होगा, तो जितना सीखा है वही सिखाना शुरू कर देना, तुम कायदा ही पढ़ाना शुरू कर देना। फिर वहाँ जाके जो उसने अपनी खबर भेजी थी, यकीन करें कि इंसान सोच नहीं सकता, उसने कहा कि हकीकत ये है कि यहाँ आके मैंने देखा है कि यहाँ के मुसलमानों को कलमा भी नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं आता, इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं उनके दिल में। कल कोई मुझे कह रहा था कि यहाँ अभी हम इस मुल्क शहर में तो फिर भी बहुत मुस्लिम हैं, आप ज़रा नॉर्वे के नॉर्थ में जाएं तो लोगों को इस्लाम का कुछ पता ही नहीं, हत्ता कि जो अपने पाकिस्तानी 1965 से आए हुए हैं, उनकी नस्लों को इस्लाम नहीं पता। आप कैसे जंग जीतेंगे? आप तो अंदर से हारे हुए हैं। देखिए, आप किसी को डिफेंड कब करते हैं? जब आपको यकीन होता है वो सच्चा। यानी मिसाल है, आप अगर मुझे जानते हैं, मेरी हर बात जानते हैं, तो अगर कोई बाहर मुझे बुरा कहेगा तो आप एकदम बोलेंगे, नहीं आपको नहीं पता, हमें पता है, हम उनसे पढ़ते हैं। और अगर आपके अपने ही दिल में मेरे बारे में शक हो, या आप मुझे ही ना जानते हो, तो आप कोई कहेगा, आप कहेंगे हाँ लगता, पता नहीं, फिर ठीक ही कहते होंगे। आज हम क्यों इस्लाम के खिलाफ बातें सुन के एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान होते हैं, कोई ईमेलों में कोई परेशान, वजह क्या कि हमें खुद भी नहीं पता। तो अल्लाह ताला कहते हैं वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, दो फितने हैं, एक शिर्क का फितना है। पूरे ग्लोब पे ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा जिस दिन लगेगा तो पहला फितना खत्म होगा, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह के नाम का झंडा लगना लाजिम है। ये अल्लाह का तहम्मुल है, वह सबूर है कि उसने दुनिया में नॉन मुस्लिम्स के झंडे लगने दिए हुए हैं। हम अपने घर के अंदर एक कमरे में भी किसी दूसरे के नाम का नेम की तख्ती नहीं लगने देते, कहते मेरा घर है, लेकिन अल्लाह ने इस ज़मीन पर कहीं कुफर के झंडे लगाए, कहीं शिर्क के, कहीं हिंदुज़म के लगाए। वो कहते हैं मुसलमान तुम जाओ, तुम मेहनत करो, इनको इस्लाम सिखाओ, ये खुद ही बदल जाएंगे। हम कहते तलवार से जिहाद होगा, नहीं होगा, तलवार से बाद में होता है। फिर फरमाया वला तो कातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, फिर दोबारा आप देखिए कि वही बात आ रही है कि मस्जिद हराम के करीब ना लड़ना, लड़ाई करो लेकिन अपनी अपने मैनर्स ना भूलना। मस्जिद हराम हुरमत वाली जगह है, जहाँ किसी का खून नहीं बहाया जा सकता, जहाँ किसी को मारा नहीं जा सकता, लिहाजा उसकी हद में ना मारना। लेकिन अगर ये मक्का वाले हरम की हद में तुम पे हाथ उठाएं तो हत्ता युकातिलुकुम फीही, जब ये तुमसे हरम की हद में भी लड़ेंगे फिर तुम भी लड़ो, इजाज़त है? हरम की हद में नहीं लड़ सकते। नबी सल्लम ने फरमाया जब से ज़मीन आसमान पैदा हुए मक्का तो हुरमत वाला है, अल्लाह ताला ने सिर्फ चंद लम्हों के लिए इसकी हुरमत को उठाया था। कब? जब नबी सल्लम फ़ातह मक्का बनकर मक्का में आए थे 8 हिजरी में, नबूवत के मदीना हिजरत करने के 8 साल बाद, थोड़े लम्हे में, और कोई खून उस वक़्त भी नहीं बहा, और उसके बाद क़्यामत तक मक्का आज हराम है। फरमाया यहाँ जो मारेगा दूसरी जगह मारने से ज़्यादा गुना है। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह चौथे पारे के बिल्कुल शुरू में कि अल्लाह ताला ने इसको अमन वाला बनाया, यहाँ तो सिर्फ सांप, बिच्छू, कौवा, कुछ इस तरह के मोजी जानवर हैं, इसके अलावा किसी को मार भी नहीं आप सकते, गिरी पड़ी चीज़ जहाँ की नहीं उठाते। लेकिन कहा अगर तुम मस्जिद हराम में और ये कुफार वहाँ तुम्हें मारे फिर तुम भी मारो, वरना तो आप देखिए हर साल मुसलमान लाखों की तादाद में हरम में जाते हैं। काफिरों को अगर पता लग जाए कि मुसलमानों ने यहाँ हाथ नहीं उठाने तो फिर क्या होता, वो सारों को मार देते। हर साल हज जो हाजी होते वो शहीद भी होते, कि लोग कहते इन्होंने तो आगे से कुछ करना नहीं, मार दो इनको, कहा नहीं ये पक मारे तुम भी मारो। फ़ैन क़ातलूकुम, हाँ अगर ये तुमसे लड़ाई करें तो फिर फ़क़्तलूहुम, फिर मारो, हरम में कोई हाथ भी उठाए तो फिर मार दो। इसीलिए हरम के अंदर इस तरह की लड़ाई झगड़ा करने वाले की सज़ा जो है वो कत्ल है। کیونکہ اس نے حرمت کو پامال کیا. فَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, یہی جزا ہے کافروں کی, کافر اسی قابل ہوتے ہیں. ہاں اگر فَإِنْ اِنْتَهَوْا, پھر اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. بات کا خلاصہ کیا ہوا ابھی تک کی بات کا, کہ یہ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ تم ویسے ہی کرو, یہ مارنے جاتے تم بھی مارو, یہ نہیں مارتے تو تم بھی نہ مارو. ہاں جو یہ تمہارے ساتھ کریں ویسا کرو, یہ رک جائے تم بھی روک دو. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے لڑو یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ, فتنہ باقی نہ رہے. ہاں ویکون الدین للہ, اور اللہ کا دین باقی رہے, یعنی دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے, پوری دنیا میں اسلام آ جائے. اور یہ آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے نا, پوری دنیا میں اسلام آئے گا. جتنے مسلمان ہیں وہ تو ان کے ساتھی ہوں گے, کرسچینز جو اس وقت کے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ فوراً اسلام میں آ جائیں گے, کیونکہ جب ان کا لیڈر ہی ڈکلیئر کر دے گا کہ آئی ایم مسلم تو ان کو کوئی اعتراض نہیں. پیچھے صرف رہ جائیں گے یہود, وہ یہود کے ساتھ مقابلہ کریں گے. انہی دنوں میں پھر دجال آئے گا جو یہود کا لیڈر ہوگا, پھر اس کا مقابلہ ہوگا. جب دجال مرے گا حضرت عیسیٰ کے سامنے, پھر اس کے بعد یہود میں سے بھی بہت سارے لوگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مسلمان ہوں گے, جو باقی رہ جائیں گے ان کو وہ مار دیں گے. اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ پھر اتنا دین ہوگا دنیا میں کہ پوری دنیا پہ لوگوں کو ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے پیارا ہوگا. پھر اتنی برکتیں آئیں گی اس وقت کہ فرمایا کہ ایک جانور کا دودھ ہے پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا, ایک انار پورے کنبے کے لیے کافی ہوگا. یہ جو آج برکتیں اٹھی ہوئی ہیں نا, بے برکتی ہے, مہنگائی ہے, لوگ مر رہے ہیں, یہ ہمارے کرتوت ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, دین سارے کا سارا پھر اللہ کے لیے رہے گا. فَإِن انتہوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک بات کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا ایک کانسیپٹ دے دیا کہ زیادتی کافروں پہ بھی نہیں کرنی. مت سوچو کہ تم کافر کے اوپر ہم جتنی زیادتی کر سکتے ہیں وہ کر دیں اور اپنوں پہ نہ کریں.